عبرت جہاں میں نگاہیں اٹھا تو یوں غفلت میں جیون نہ اپنا گوا تو.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام سبق آموز خبریں, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کی جاتی ہیں, بیان کی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ناظرین اکرام, پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد عمران اتاری صاحب, اور آج کا پروگرام کن خبروں پر مشتمل ہوگا آئیے سب سے پہلے ہیڈ لائن ملاحظہ کرتے ہیں.
حادثات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے, ٹریفک حادثات میں ہونے والی ہلاکتیں, ایڈز, کئی قسم کے سرطان اور خودکشیوں کی وجہ سے ہونے والی اموات سے بھی زیادہ ہیں. گزشتہ سال 2023 کے دوران کراچی میں ٹریفک حادثات میں 777 افراد جاں بحق ہوئے. پاکستان میں روزانہ 10,000 خون کی بوتلوں کی ضرورت پڑتی ہے. پاکستان میں صرف 10% خون کی بوتلیں رضاکارانہ طور پر عطیہ کی جاتی ہیں.
اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں, میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں.
اللہ اکبر. خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھیں گے اور سب سے پہلے ایک خبر حضور شامل کرنا چاہ رہا ہوں میں, اور حالیہ ایک رپورٹ بھی آئی ہے کراچی میں کچھ حادثات کے تعلق سے, ایک ویڈیو پیکج ہے, جی دکھائیے.
گزشتہ سال 2023 کے دوران کراچی میں ٹریفک حادثات میں 777 افراد جاں بحق ہوئے, جس میں سب سے بڑی وجہ تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے. یہ تعداد اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے مارے جانے والوں اور دیگر قتل و غارت میں ہلاک ہونے والوں سے زیادہ ہے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناظرین اکرام, اور بھی اس سے ریلیٹڈ کچھ خبریں ہیں جو حادثات پر مشتمل ہیں, آئیے وہ بھی ایک ساتھ دیکھتے ہیں.
میکسیکو میں تاریخی وطن کے بس ٹرولر سے ٹکرا گئی, 16 افراد ہلاک, 36 زخمی. حادثات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے, ٹریفک حادثات میں ہونے والی ہلاکتیں, ایڈز, کئی قسم کے سرطان اور خودکشیوں کی وجہ سے ہونے والی اموات سے بھی زیادہ ہیں. میکسیکو میں ہونے والے ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں 16 مسافر ہلاک اور 36 زخمی ہو گئے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق میکسیکو کے اوکساکا ہائی وے پر تیز رفتار مسافر بس اور ٹرولر آپس میں ٹکرا گئے. تصادم اتنا خوفناک تھا کہ بس کے پرخچے اڑ گئے. اقوام متحدہ کے روڈ سیفٹی فنڈ کے شعبے کے مطابق ہر سال 24 سیکنڈ کے بعد ایک فرد سڑک پر ہلاک ہو جاتا ہے. پاکستان کو ہر سال ٹریفک حادثات کی وجہ سے تقریباً 9 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ رقم حادثے کے بعد گاڑیوں کی مرمت, زخمیوں کے طبی علاج, گاڑیوں کی مروجہ قیمت اور حادثات کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے ازالے پر خرچ کی جاتی ہے.
اللہ اکبر. حضور آپ نے یہ رپورٹس ملاحظہ فرمائی, کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے, اور اس میں جہاں جہاں مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے اللہ پاک سب کو غریق رحمت فرمائے, اور جو زخمی ہوئے اللہ پاک سب کو صحت دے, اور ان کے لوائقین کو اللہ تعالیٰ ہمت و صبر بھی عطا فرمائے.
آمین.
ابھی یہ جو رپورٹ آپ نے پیش کی ہے, اس رپورٹ کے اندر 3-4 چیزیں بڑی زیادہ میں نے نوٹس کی ہیں. نمبر ایک, کہ جیسے یہاں کہا گیا کہ مختلف بیماریاں جس میں کینسر بھی ہیں, ایڈس بھی ہیں, اس میں جو سالانہ اموات ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو ریشو ہے, ڈیتھ ریشو, वो रोड एक्सीडेंट का है।
पाँच सात का बिल्कुल ऐसा है।
अब ये जो एक्सीडेंट होता है, अच्छी बात यह हासिल क्योंकि रोड एक्सीडेंट ही नहीं है, ट्रेन एक्सीडेंट है, एयर क्रैश हो जाता है, और इसके अलावा मतलब समुंदर में लोग डूब कर भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, जो बाद वक्त गफलत की वजह से हो जाते हैं, वो तो खैर हम रिपोर्ट कर ही नहीं पाते। जो बोटिंग और इस तरह की जो तफरी के नाम पर, जो दुनिया भर में एक समुंदरी तफरी अलग है, यानी कि दुनिया में जहाँ जजीरे बने हुए हैं, आइलैंड बने हुए हैं, वहाँ पर उन जगहों पर बाकायदा समुंदर के नाम पर जो सी साइड के तौर पर जो तफरी का सामान रखा गया है
जी,
और लोग इसको एंटरटेन के तौर पर लेते हैं, उसमें दुनिया से जाने वालों का जो फिगर है वो शायद अब हम इस पर ले भी नहीं रहे हैं। ये सारे ये हादसात हैं। इसी तरह जो लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर, जैसे कि रेगिस्तान होता है, इसको सफारी कहते हैं, रमल टाइप की कोई सा वर्ड है जो कहते हैं, उसमें भी हो जाता। हाल ही में हमारे एक जानने वाले के बारे में ये पता चला कि वो गए थे अपनी फैमिली को लेकर कहीं, वो इसी तरह वो जो सब वो टीले बने होते रेत के, ये ज्यादातर ये अरब दुनिया में ये पाया जाता है, टीले बने तो उसके ऊपर बाकायदा एक तफरी होती है और गाड़ियां दौड़ती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती हैं, और उस पर बाकायदा एक सिस है, तो सफारी भी कहते हैं
जी,
तो वहां भी गाड़ियां पलट जाती हैं, उलट जाती है। अच्छा, पहाड़ों पर चढ़ने के भी गाड़ियों के वाक्य होते हैं, ये सारे मुकाबले के टाइप की चीजें होती हैं, इसमें कुछ तफरीहात भी होती हैं, तो ये सब कुछ किया जाता है। तो इसमें होने वाले जो हादसात हैं ना, वो शायद इसमें रिपोर्ट हुए हो नहीं हो मुझे पता नहीं है, लेकिन हर 24 सेकंड में एक हादसा होना, यानी यूँ समझे कि अगर ये हादसे से मुराद डेथ है तो एक अलग है, अगर सिर्फ हादसा भी है तो अगर इंसान मरता नहीं है तो माजूर हो जाता है, टांग टूट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जो कोमा में चला जाता है,
अल्लाह अल्लाह,
और कोई उज्व पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो उसका जाया हो जाता है, अल्लाह पाक खैर कर अंधा हो जाता है,
बिल्कुल ऐसे,
और कई मतलब चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरा मतलब कि यू समझे कि पूरा नक्शा बर्बाद हो जाता है इंसान का। जो मनाजिर आपने मुझे अभी स्क्रीन पर दिखाए हैं, इनमें जो मोटरसाइकिल वाला जो मंजर है, तो पिछले दिनों गाड़ी में भी कहीं, जैसे कि अगर कहीं निकलते हैं, आना जाना रहता है
जी,
किसी भी मुख्तसर या ज्यादा सफर पर, वहाँ बाकायदा मैंने देखा है कि ये ऐसा लगता है जैसे कि ये सिलसिला बढ़ रहा है। अब नौजवान इस तरह मोटरसाइकिल के तौर पर एक ग्रुप निकलते हैं, सुन रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो इस तरह के नौजवान हैं, और ये शायद दुनिया भर में ये फैलता जाता है। एक तो हैवी बाइक कल्चर
जी,
उसकी रेसिंग। अच्छा, अब इन्होंने, हमारे नौजवानों ने इन्हीं सड़कों को अपना रेसिंग ट्रैक बना लिया है। ये है नहीं
सही,
ये सड़कें नॉर्मल गाड़ी चलाने के लिए
ठीक है,
ट्रैफिक चलती है
जी बिल्कुल,
और इस तरह मतलब के हैवी बाइक का या मोटरसाइकिल के ये जो कर रहे होते हैं सारे अंदाज, इसके लिए इनके अलग ट्रैक होते हैं, इनके अलग इनके ग्राउंड होते हैं, इनके अलग इनके एरियाज बने होते हैं, वहाँ इनकी कोचिंग होती है, वहाँ इनकी टीचिंग होती है, वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है, ये सब कर रहे होते हैं। अब मीडिया पर आने वाली चीज़ों को जब ये शायद मेरा नौजवान देखता होगा कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ,
बिल्कुल ऐसा
मैं कर सकने के नाम पर ये कर रहे होते हैं, और फिर ये मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, फिर साथ में ट्रालर आ गया, गाड़ी आ गई, कोई और चीज़ आ गई, दोस्त ही आपस में टकरा गए, तो कर रहे होते हैं। मैं भी सड़क पर कभी आते जाते देख रहा होता हूँ, मतलब देखा है मैंने, बिल्कुल ये वीडियो ही नहीं है मेरे लिए, मैंने बिल्कुल लाइव देखा है, तो सामने बिल्कुल इस तरह गुजर गए, ये लेट गए, अब वो बिल्कुल मोटरसाइकिल चला रहा है और लेटा हुआ है, अब भाई क्यों लेटा हुआ है, घर पर घर नहीं है कि तेरा लेटने के लिए, मोटरसाइकिल की सीट पे कैसा लेटेगा, आते लेटा हुआ है, टंकी के ऊपर इसका मुंह है
जी,
और पीछे टांगे हैं, और ये मोटरसाइकिल चला रहा है, अभी क्यों कर रहा है ये मेरे को भी नहीं पता, सिर्फ इसके कि इसको चार आदमी से इसको वाहवाह मिलेगी, और क्या है इसके मतलब क्या मिलेगा, कोई
सही बात
ना, कोई मुकाबला नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर बहुत ज्यादा वो शोहरत हुबे जा
जी,
एक शोहरत तलबी के लिए अपनी जान को हलाकत में डालना। मैं मुफ्ती साहब से मौजू पर बात कर रहा था, तो वो जो कुरान करीम में है, ओला तुलकू भी आई दी को मिला तहलुका, यही आई थी आयत करीमा, कि अपने हाथों अपनी जानों को हलाकत में ना डालो। तो ये मेरे वो नौजवान या जो भी इस तरह के काम कर रहे होते हैं, सिर्फ नौजवान हो या कोई भी हो, जो भी काम कर रहे होते हैं, यानी जिनको इस मामले की कोई तरबियत ही नहीं है,
جو اس معاملے کی جس فن میں ہے ہی نہیں، اس مطلب کہ لائن میں ہے ہی نہیں، اس چیز کی کوئی ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں، ان کا تو خاص طور پر اس طرح کا کام کرنا جو ہمارے یہاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس آیت کریمہ کے تحت آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اب مطلب کہ یہ سارا حساب کتاب و نظام کر رہے ہیں. پھر اس میں ایک تو یہ ہوگی غفلت، یہ جو اگر ہم اس کو بولیں کہ یہ تھوڑا ناراض نہ ہو جائیں، ڈیڈ ہوشیاری یا کیا بولیں گے اس کو، ٹھیک ہے،
اچھا لفظ ہے حضور،
مطلب یہ خراب بھی لگ جاتا ہے اس طرح، برا نہ مانے، آپ کے ماں باپ مجھے دعائیں دیں گے یار یہ لوگ کوئی تو سمجھا رہا ہے، یہ تو سمجھتے نہیں ہمارے بچے، یعنی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں، اندھا ہو جاتا
ہے
اور معذور ہو جاتا ہے
زندگی بھر کے لیے پچھتاوا.
ابھی اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ تیز رفتاری
جی،
اب یہ بھی میری آنکھوں نے دیکھا، میں کو دعوت اسلامی کے ہی کام سے کہیں جا رہا تھا گاڑی کے اندر، اور تھوڑا رات کا حصہ تھا، اور میری سامنے جو کاریں جو چلی ہیں، آپ مطلب ایک چلبلے نوجوان ہوں گے، اوبالی قسم کی طبیعت ہوتی ہے
صحیح،
وہ جس طرح کاریں چلا رہے تھے تو باقاعدہ مطلب کہ مجھے گاڑی سلو کرنی پڑی. میں کہا یار یہ مطلب یہ کیا مطلب ان کا، آپ کو سمجھانے جیسا بھی نہیں ہوتا
صحیح.
اللہ پاک خیر کرے، پتہ نہیں ان کو کس چیز نے اس پر ابھارا ہوا ہے. اچھا اگر قانون نافذ کرنے والے کوئی جمع کھڑے ہیں اور وہ یہ کر، اب دیکھو جیسے یہ، اچھا یہ جو کار کا جو حادثہ بھی اسکرین پر آپ دکھا رہے نا
جی،
میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی
جی،
اب یہ ویڈیو پوری دکھا دے تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں.
اس کے آگے پھر یہ حادثہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ سائڈ میں ایک پلر کے ساتھ،
ٹھیک ہے، یہ حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے،
اللہ اکبر.
اب یہ جو حادثہ ہوا ہے، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ جیسا حادثہ ہوا نا، یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یا تو اب جیسے وہ جو یہ جو حادثہ دکھایا ہمارا، اب یہ دیکھیں کنٹینر کے آگے گاڑی آئی ہے
جی،
دیکھے آپ نے
جی 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 جی،
وہ گاڑی آئی ہے، یا تو وہ گاڑی اوورٹیک کرنے گئی یا گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی. اچھا اس میں بعض اوقات کہیں ڈرائیور قصور ہوتا ہے، کہیں ڈرائیور کا قصور نہیں ہوتا، سم ٹائم چلاتے چلاتے تو بریک فیل ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی وہ مینٹیننس ایشو آئے گا کہ آپ نے مینٹیننس کرائی تھی یا نہیں کرائی تھی
صحیح،
یا کوئی اور ایک تو میکینیکلی ایرر ہے
صحیح،
کہ اس کی مطلب مشینری کے طور پر یا میکینیکلی مطلب میکینیکلی طور پر
جی جی،
کیونکہ الیکٹرانک گاڑی ہے تو الیکٹرانکلی کوئی مسٹیک ڈیفیکٹ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو ایک الگ ہے، کہیں ہیومن ایرر آتا ہے
صحیح،
چلانے والا ہی جیسے موبائل پر مصروف ہے، یا ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ میرے دیکھا ہے، سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ گاڑی چلتے چلتے جو نا اب یہ
سیٹ بیلٹ باندھے،
سیٹ بیلٹ، اب سیٹ بیلٹ اٹک جاتا ہے نا، سیٹ بیلٹ اٹک گیا
صحیح،
اب اٹکا تو ابھی یوں کھینچتا رہے گا، اب یوں کھینچے گا تو ابھی اچھا اب یہ کلپ میں جاتا نہیں ہے تو پھر اس ہاتھ سے پکڑے گا کلپ میں ڈالے گا. یہ میرے دیکھے ہوئے تو باتوں کا درست کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ چلتے چلتے گاڑی میں تھوڑی کوئی سیٹ بیلٹ، ارے سیٹ بیلٹ لگائیں آپ، گاڑی ابھی کھڑی ہوئی، ابھی گاڑی آپ نے نکالی نہیں ہے روڈ پر، سیٹ بیلٹ لائیں، لائیں نکالیں، کلپ میں لگائیں، اور کلپ میں لگانے کے بعد پھر چلائیں. تو اب یہ سیفٹی، اچھا مجھے کبھی یہ نہیں اندازہ ہوتا تھا یہ سیٹ بیلٹ جو لگاتے تو کیا
صحیح.
تو حال میں میں کہیں سفر پر تھا تو میں نے پیسنجر سیٹ پر تھا، سیٹ بیلٹ میں نے لگائی ہوئی تھی، سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی تھی تو کسی وجہ سے کوئی سامنے سی حادثاتی صورت جیسے پیدا ہونے لگی، تو جو گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے ایک بڑا ہی ایکسٹریم بریک مارا نا تیز
صحیح.
اب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پورا سیٹ بیلٹ تو مجھے کھینچ، مطلب مجھے ہی نہیں پتا تھا کہ سیٹ بیلٹ ایسے موقع پر آٹو سسٹم کے تحت یہ کھینچتا ہے آپ کو، اور آپ کو کھینچ کر جو ہے نا یہ بالکل سیٹ سے لگا دیتا ہے. ہمیں اس وقت نہیں پتا چلا جب سیٹ بیلٹ لگا ہوا تھا، ہم نارمل ہوتے ہیں
صحیح.
لیکن جب خدا نہ کرتے ایسی کوئی ایمرجنسی صورتحال آتی ہے نا تو اس کا باقاعدہ ایک سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ کھینچ کر آپ کو بالکل سیٹ سے چپکا دیتا ہے، اب آپ آگے موو نہیں کر پاتے. اور جب گاڑی کو آگے کہیں ہٹ ہوتی ہے نا
جی،
خدا نہ کرتا گاڑی کہیں ہٹ ہوئی
صحیح،
جیسے ہٹ ہوئی نا تو آپ کے آگے کے ڈیش بورڈ پر کے اوپر جو وہ ایئر بیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں
جی،
نظر نہیں آتے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ایئر بیگ، وہ ایئر بیگ ہی کھل جاتا ہے. جب ایئر بیگ کھلتا ہے نا تو اب ایئر بیگ سے کیا ہوا کہ آپ ایک تو آگے نہیں گئے
جی،
ایئر بیگ کھل گیا تو آگے کے جو شیشے نا وہ آپ کی طرف نہیں آئے. اگر خدا نہ کہتا ایسے میں گاڑی اگر گر بھی جاتی ہے نا، کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ انجری نہیں ہوتی، بہت زیادہ آپ زخمی نہیں ہوتے
صحیح.
تو یہ اس کے سیٹ بیلٹ کے تو فائدے، اب سیٹ بیلٹ کے فائدے پر آپ اس پر غور کریں
جی،
کہ 2023 اور 2024 میں جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان گاڑیوں کے اندر اب یہ کمپلسری ہو چکا ہے کہ پیچھے پیسنجر کا سیٹ بیلٹ لگتا ہے
सही,
यानी पैसेंजर का सीट बेल्ट लगता है, और अगर उसने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया पीछे पैसेंजर ने, तो आगे गाड़ी बीप करती है, टू 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 बोलती है। और कानून, एक जो दुनिया में जो कानून है, मैं भी सही गलत पर इस पर गुफ्तगु नहीं कर रहा,
सही,
ये जो चालान करते हैं, अगर आपने पीछे वाले ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया,
उसका भी चालान होगा।
हाँ, चालान ड्राइवर का नहीं होगा, चालान उसी का हो, उसी को पैसे देने पड़ेंगे।
अच्छा,
हाँ
सही,
कहीं मतलब कि जो भी वहाँ की करेंसी होती है उसके हिसाब से। लेकिन ओवरऑल जो ये जो इकदाम हैं, ये हमारे लिए भले के हैं जो लोग नहीं करते, तो ये टोटल ऑल ओवर जो एक्सीडेंट के तौर पर जो हमने कहा कि 24 सेकंड के अंदर एक हादसा होता है, तो हम अगर इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं, जो इस वक्त मैं मदनी चैनल पर कर रहा हूँ
जी,
और मेरे सुनत मदनी मुजाकरे में कर रहे होते हैं, अब हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल चलाएं हम कर रहे होते हैं,
बिल्कुल ऐसा,
अब मोटरसाइकिल की चेन कवर के साथ मोटरसाइकिल चलाएं हम कह रहे होते हैं, विदाउट लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं, ट्रेनिंग के साथ तरबियत के साथ चलाएं हम कह रहे होते हैं, सिग्नल पर खड़े होने की आदत रखें जब कह रहे होते हैं, तो लॉ को फॉलो करें, कानून को फॉलो करें, ट्रैफिक के तौर पर अमीले सुनत, मेरा ख्याल है शायद रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर, इस्लामिक स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर मैं बात करूं, तो जितना ट्रैफिक को इस तरह के लॉ को फॉलो करने के ताल्लुक से अमीले सुनत बयान फरमाते हैं मदनी मुजाकरे में, एक स्पिरिचुअल सेंट है, एक हमारे बुजुर्ग, एक रूहानी पेशवा है, तो नॉर्मली इस तरह के प्लेटफॉर्म से इस तरह की डिस्कशन होती नहीं है, मगर चूंकि दावत इस्लामी के साथ एक लाखों करोड़ों की फॉलोइंग है
जी,
और गाड़ी मोटरसाइकिल बस ड्राइवर हमारे पास है, तो फला ड्राइवर हमारे पास है, तो गाड़ियां चलाने वाले अमीर गरीब प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल सारे दावत इस्लामी में है, और सुनते हैं कि यार जो कहने वाले ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और एडमायर करते हैं, लोग मानते हैं, तो इस तरह की वीडियोज अमीर सुन्नत की आपने बयान भी फरमा, हमने इसको ऑन एयर भी किया है, और इसलिए कि ये बच्चे, अब देखिए इसमें एक और रिपोर्ट आपने बताई, मैं इसी को थोड़ा सा तकसीम करते चलता हूँ
जी, बिल्कुल,
ये 9 अरब डॉलर का लॉस हुआ पाकिस्तान के अंदर, किसके ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, जो टूट फूट का शिकार हुई गाड़ियां या हादसा, तो इसके वजह खर्च हुआ 9 अरब डॉलर, अगर हम अपने मुल्क के बचाते हैं, यानी ये टोटल जो हमारी हमारी आमदनी है, हमारे या तो जेब से गए या किसी गवर्नमेंट के से गए या सेमी गवर्नमेंट से गए या किसी और अंदाज से गए, इलाज पर गए हैं या आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस पर, किसी चीज पर भी खर्च हुए, मैकेनिकली गए या डेंटिंग पेंटिंग पर गए, अभी हादसा की सूरत में जो खर्च हो रहा है सालाना 9 अरब डॉलर, समझे तो सही, 9 अरब डॉलर किसको बोलते हैं यार। अच्छा, जब हादसा हो गया तो बेरोजगार हो गया, कई बेरोजगार हो गए, अच्छा बेरोजगारी और सामने मेडिकल का खर्चा,
बिल्कुल ऐसे,
राइट
जी,
ये हुआ फैमिली टेंशन, 3 कर्जा 4,
अल्लाह अकबर,
अब आगे घर पर अब कुछ करने जैसे नहीं है,
माजूरी
बैठे बिठाए आदमी को, अट्टे कट्टे आदमी को भी जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, क्वालिफाइड आदमी बेरोजगार हो गए, तो ये बेचारा हादसे का शिकार जो बेरोजगार हो जाता है, अब ये रोजगार के लिए निकलेगा तो इसके लिए कितनी बड़ी आजमाइश होगी,
सही बात है,
अब डिप्रेशन लेगा, एंजाइटी लेगा, स्ट्रेस लेगा, शुगर बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा,
अल्लाह अकबर,
कुछ बयान नहीं कर सकते, अरे मतलब कि इतनी, मतलब कि वो कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तो आप एहतियाती क्यों नहीं कर लेते, एहतियात से चलाएं, नॉर्मल गाड़ी चलाएं, तरीके कार के तहत चलाएं। एक और अच्छा हुआ हमारे ट्रैफिक वालों ने एक निकाला, अभी मैं कहीं जा रहा था, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, अब कराची की जो हादसा की आपने दिया, तकरीबन 700 and something कराची के एक्सीडेंट हैं,
बिल्कुल ऐसा है,
ठीक है, तो अब उसमें मैंने एक अच्छी चीज देखी, मैं ट्रैफिक की जो हमारी अथॉरिटी है उसका मैं अप्रिशिएट करूंगा, कि बाकायदा वो जो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस की जो गाड़ी होती है, कार थी, तो बाकायदा उस कार के पीछे एक स्लाइड चल रही थी, स्क्रीन चल रही थी कि मोटरसाइकिल चलाने वाले फला ट्रैक पर हैं, ये यूं रहे, ये यूं रहे, फला यूं रहे, एक अवेयरनेस थी, एक मालूमात फराहम करने का था, मैंने भी पढ़ा जब मैं जा रहा था, मेरे आगे ये गाड़ी चल रही थी, तो मैंने पर मुझे अच्छा लगा कि ये पब्लिक अवेयरनेस देने का काम हमें करना चाहिए, जो ट्रैफिक हमारे पुलिस वालों ने ये किया है, जो इदारे ने किया है, ये एडमायरेबल है, ये अप्रिशिएट करना चाहिए, मैंने क्योंकि जब नहीं कर रहे होते तब ये कहते भाई ये काम क्यों नहीं करते हो, तो जब कर रहे हैं जो काम अच्छा, तो हमें इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ये काम भी अच्छा हुआ है। अब इन्होंने तो लिख कर ले दिया, आगे चल रहे हैं भाई, हम पीछे पढ़ रहे हैं, तो उर्दू और आसान, इतनी मुश्किल उर्दू भी नहीं थी, इंग्लिश में भी नहीं था, उर्दू में भी था, तो अब इसके बावजूद भी अमल ना करें। अच्छा, ये ये फॉर एग्जांपल कि मोटरसाइकिल अपनी लेफ्ट साइड पर रखें, एग्जांपल दे रहा हूँ
जी।
अब ये पढ़ने वाला किसी और तरफ ही पढ़ रहा है, मोटरसाइकिल वाला पढ़ के भी बोला मैं यहीं चलूंगा क्योंकि गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है मुझे यहाँ। अब कार वाले ने वहां लगाया हुआ है कि भाई आप मोटरसाइकिल वाले उधर चले जाओ, लेकिन नहीं मैं इसके पीछे चलूंगा क्योंकि इसने मुझे। अब ये भी नहीं समझ में आया हमको, तो अब ये क्या उतर कर ही समझाएंगे हमें? तो ये अब हमारा काम है। अच्छा लॉस किसका हो रहा है? आपका मेरा हो रहा है, मेरी फैमिली का आपकी फैमिली का, हम सबका लॉस होता है, पैसे अलग जाया हो रहे होते हैं। तो क्या ही अच्छा है कि प्लीज इसको समझिए। और मैंने तो बहुत पहले अपनी इस्लामी बहनों से दरख्वास्त की हुई है कि अगर आपके घर के जिसकी मोटरसाइकिल पर आप बैठ रही हैं, अगर मोटरसाइकिल पर चेन कवर नहीं लगा हुआ आप मोटरसाइकिल पर मत बैठिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट थी, मेरी सिफारिश थी मेरी इस्लामी बहनों से। माशाल्लाह बाप पर्दा होती हैं, बुरके में होती हैं, चादरों में होती हैं, इनकी मोटरसाइकिल की चेन में इनकी चादर फंसने में देर लगेगी कितनी?
ऐसा ही है
आपकी कितनी देर लगेगी? दुपट्टा है आपका, कुर्ता है, ये कुछ भी फंस गया, ये फंसा बंदा। अच्छा परेशान, एक और परेशानी ये मेरी आंखों से देखी हुई बातें हैं। अच्छा पेट्रोल की टंकी के ऊपर आपका बेटा बैठा हुआ है, पीछे गोद में कोई आपका बच्चा होगा, आगे ये साहब मोटरसाइकिल चला रहे हैं और कोई मतलब इसकी कोई वो एहतियात है नहीं। आप सोचिए हादसे का नतीजा क्या निकलेगा, कभी जहन में आया आपके?
अल्लाह
इस हादसे का नतीजे पर तस्वर करें। मैं अपने इस्लामी भाइयों से कह रहा हूँ, जो मर्दों से कह रहा हूँ, भाई आपकी मोटरसाइकिल है 800-900 का चेन कवर आता है, अब 800-900 का चेन कवर नहीं लगा, आपको अल्लाह ना करे एक्सीडेंट का खर्चा पता है? अच्छा खर्चा हुआ, जाने चली गई,
अल्लाह अकबर।
अच्छा ब्रेक पर पाँव रखा, ब्रेक पर पाँव नहीं लगा, ब्रेक पर एड़ी रखी हुई है आपने मोटरसाइकिल के, मोटरसाइकिल के ब्रेक पर आपकी एड़ी है, आपने हील रखी हुई है क्योंकि आपको यू दबाना है, वो नीचे तक जाएगा। 200 रुपए का ब्रेक शू आता है जिससे आपका ये ब्रेक लग जाएगा। आप बोले ब्रेक शू खत्म नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? ब्रेक शू घिसेगा तो सही ना? अरे महीने में एक दफा भी तो 200 रुपए का ब्रेक शू लगा लो भैया। वो जितनी मोटरसाइकिल का आपका इस्तेमाल उसके हिसाब से है ना, ज्यादा इस्तेमाल है तो फिर 200 रुपए का तो पेट्रोल भी तो भराते ना, नहीं भराते भैया? 200 से ज्यादा का तो 1 लीटर का पेट्रोल आ जाता है आपका। तो ये वो चीजें हैं कि जिसको थोड़ा सा आपने देखना है, क्लच सही काम नहीं कर रहा, ब्रेक सही काम नहीं कर रहा, टायर आपका गंजा हो गया है बेचारा, गंजा टायर कभी देखा है? उसके जो दांत है वो खत्म हो गए और वो पत्थर भी लगेगा तो पंचर हो जाएगा, वो लेके चल रहे हैं आपके वो स्लिप जल्दी हो जाता है। ये मैं सारी बातें आपको जो अर्ज कर रहा हूँ, मेहरबानी करें, इन सबकी मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, इन सबके आपको मैं इमेजेस दिखा सकता हूँ, मैंने पहले भी दरख्वास्त की है, मेहरबानी करें हादसों का हाल तो देखें यार आप। और हर 24 सेकेंड के अंदर एक एक्सीडेंट,
अल्लाह अकबर कबीरा।
अब तस्वुर तो करें, जो भी बच्चे हुए हैं जिंदा हैं हादसे से बच्चे हुए हैं वो मान तो जाएं आप, और अल्लाह करे कि अभी इस घड़ी के बाद आज से हादसे कम हो जाए भाई, मेहरबानी करो
अल्लाह करो।
हम तो ये खाली बात पहुंचाने की थोड़ी बात करेंगे, ये सारी गुफ्तगू के भाई कम करें, पीछे आए, ये हादसे कम होने चाहिए।
नाज़रीन भी कुछ हुजूर अपना राय का इजहार कर रहे हैं आपकी बातों पर, क्या है कॉल सुनाइए।
सबक आमोस खबरें में निगरानी शुरा आपसे ये सवाल है, अभी एक तेज रफ्तारी पर एक रिपोर्ट चली, इसमें एक ये भी देखा जाता है कि पीछे से आने वाला तेज रफ्तारी की वजह से आगे वाले को हिट करता है, वो सही जा रहा होता है, रफ्तार भी सही होती है, इस बारे में कुछ मदनी बोल जा फरमाए कि पीछे वाले को कितनी रफ्तार से चलना चाहिए, इस बारे में भी रहनुमाई फरमाए कि इससे भी हादसा में इजाफा होता है, इस बारे में भी रहनुमाई फरमाए।
देखिए इसके लिए आपके मेरे सोच पर छोड़ा नहीं गया, एज पर लॉ कानून के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूँ, हर रोड पर बाकायदा अलग बोर्ड लगे होते हैं, हमारे यहाँ भी लगे होते हैं, बोर्ड भी उखड़ जाते हैं, कोई बोर्ड को कुछ लिख कर चला जाता है, पता नहीं मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन दुनिया भर में जो मैंने देखा, खाली मैं चाहे जनरल से कराची या पाकिस्तान में तो नहीं है, दुनिया भर में देखा जाता है, और यहाँ तक देखे हैं कि आप जा रहे हैं तो 50 की स्पीड लिखी हुई है, कहीं 20 की स्पीड लिखी हुई है, कहीं पर आपके पास 50 है, कहीं 60 है, 60 पर स्पीड जा रहे हैं, आगे 1 किलोमीटर के बाद वहाँ 50 लिखा हुआ है। तो ये स्पीड बाकायदा इदारों ने, जो ट्रैफिक के माहिरीन होते हैं, उन्होंने बाकायदा स्पीड बोर्ड को एरिया वाइज तकसीम किया हुआ है कि आप इतनी स्पीड से चलें और इतना डिस्टेंस, यानी एक गाड़ी के साथ इतना डिस्टेंस होना ज़रूरी है कि अगर वो इमरजेंसी में ब्रेक भी मारे तो ब्रेक मारने के बाद ये उतर लगे नहीं। अब होता क्या है, और मैं भी जिस गाड़ी में बैठा वहाँ भी हुआ है, ठीक है, अब ये लगे कई बातों में, ये लगे मोबाइल पर, ये पीछे जवाब देने में लगे या कुछ और करने लगे, आगे वाले ने सही ब्रेक लगाया था, उसको उसका ब्रेक लगाना देर से नजर आया और उससे ब्रेक लगाया, तो चलो गाड़ी लगी नहीं, तो एक का दफा तो चलो मतलब कि वो मुलाकात हो गई गाड़ी से, पीछे से मिल भी लिया गाड़ी ने थोड़ा सा, लेकिन बड़ा हादसा नहीं हुआ, वो बहुत बड़ी वो नहीं हुई। तो इतनी इतनी इतना इस पर टेक्नोलॉजी काम कर रही है, मैं आपको बताऊं।
जी बताइए।
जब मैं डेनमार्क में था तो बर्फ थी, ठीक है, अब सड़क पर बर्फ, बर्फ खड़ी होती है ना जो आप देखते हैं व्हाइट बर्फ
जी,
इसमें स्लिपरी नहीं होती, अगर जब ये बर्फ हटती है ना तो अब जो जमीन पर जो रोड पर जो बर्फ है ना वो मोटी तय है व्हाइट कलर की, बिल्कुल क्रिस्टल व्हाइट जो होती है, जो रोड नजर आता है
बन जाती है,
वो फिसलन होती है।
सही।
टेक्नोलॉजी ये है यानी कि स्वीडन और इस तरह के दीगर मुल्कों के अंदर जब ये बर्फ का सीजन आएगा तो इस पर लो कानूनी तौर पर आपको वो टायर लगाने हैं जो टायर वहां के इस तरह के फिसलन पर ब्रेक लगता है उस पर, ठीक है। अच्छा, अब ये एक तो वो टायर आते हैं और एक आते हैं जनरल टायर, उसमें ये भी है ना ये भी है, और एक नॉर्मल टायर आते हैं जो हमारे रेगुलर यूज होते हैं। अच्छा, मैं जा रहा था कहीं तो उसने उन्होंने ब्रेक मारा,
सही
ब्रेक मारा, टायर वो वाला था नहीं,
अल्लाह अकबर,
गाड़ी लगी धा करके लग गए, अब देखो क्या होता है, आगे मंदी मशवरा है और ये लग गई गाड़ी।
ओहो।
मगर अच्छा, अब वो भी परेशान कि अभी उतरेगा आगे गाड़ी वाला, वो जो गाड़ी वाला आ गया तो उसके को हेडफोन भी लगा हुआ था, उसे हेडफोन भी उतार दिया, अल्लाह खैर करे या अल्लाह करम कर, अब हम हमारी खुशकिस्मती को तो वो गाड़ी तो उतरे नहीं, मतलब ऐसा लगता है वो रियलाइज कर गए यार लगता है पीछे कसूर नहीं है, गाड़ी स्लिप होगा, अब टर्न करो तो गाड़ी स्लिप मारती थी, तो फिर हमें थोड़ा सा ये अच्छा ये अब ये क्या था, टायर चेंज ना करने की वजह से, तो फिर रूटीन में कि भाई ये आपके रोड पर स्लिपरी तो आएगी।
सही।
अब ये देखिए कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप है
जी,
कि आप ये करें, अब ना करने की सूरत में सब हो जाता है, तो जब हम कानून को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो कॉलर की हमारे स्नाइपर ने कॉल की, अल्लाह पाक ने चाहा तो मैक्सिमम हम बच सकेंगे।
अल्लाह पाक इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, ये बातें हमारी ही बेहतरी के लिए हैं, और हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मजीद कॉल्स भी हमारे साथ हैं, कॉलर्स क्या कह रहे हैं जी, सुनाइए।
अच्छा, मुझे ये पूछना था कि ओवर स्पीडिंग में थ्रिल होता है, दोस्तों में नाम होता है, कभी शर्त भी जीत जाते हैं, आप मना क्यों कर रहे हैं?
मना इसलिए कर रहा हूँ, इन सबकी इजाजत ही नहीं है, क्या शर्तें लगानी है, और शर्तों की जो नाजायज सूरत है उसको भी जरा पढ़ लें कि ये क्यों कर रहे हैं आप, और ये शर्त किस चीज की लगती है कि जिंदा रहा तो ले लूंगा वरना तू खा जाना, किस चीज की शर्त लगा रहे हैं, और ओवर स्पीड में ये मतलब ये काम ही नहीं है ना। अरे कितनी खूबसूरत हदीस है, इंसान के हुस्ने इस्लाम से ये भी है कि वो ला यानी कामों को तर्क कर दे, यानी जिसका दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा, अब इसमें कौन सा फायदा है, और बास सूरतें जो मैंने अभी बयान की, कुरान करीम की आयत बयान की, बास सूरतें वो हैं जिनमें ये इस तरह के ओवर स्पीडिंग और इस तरह के जो करतब कर रहे हैं, इस तरह की जो ये जो जो बना रहे हैं सड़कों पर हाल, ये करने वाले नाजायज और गुनाहगार हो, नाजायज काम कर रहे हैं, गुनाहगार हो रहे हैं, क्यों नहीं रोका जाएगा गुनाह से? गुनाह से तो रोका जाएगा
शक,
और इसके अलावा लोगों तश्वीश हो रही। अच्छा, ये खुद तो गिरा, अब जैसे आपने वो ट्रॉलर देखा, वो गाड़ी की कसूर गलती थी या नहीं थी, वो गाड़ी ट्रॉलर के आगे आई
जी,
ट्रॉलर उसे टकराया, जो गाड़ी साइड में नॉर्मल अपने ट्रैक पर चल रही थी, ट्रॉलर उस पर गिरा, एक और गाड़ी पर गिरा, यानी एक गाड़ी गलत आ गई, समय कितना लॉस हो गया। ये देखिए, ये आई, ये गाड़ी बीच में आई, ये ट्रॉलर गिरा, अब ये आगे कितना हादसा करके गया ये तो अल्लाह बेहतर जानता है।
ऐसे ही है, अल्लाहु अकबर,
क्यों ना रोका जाए, क्यों ना मना किया जाए, और भले को मना किया जा रहा है, ये तो हमें सिखाया गया दावत इस्लामी के दीनी माहौल में, इस्लाम और दीन की खूबसूरत तालीम हमें दी गई, हदीस पाक हमें समझाई गई है, खैरुन नास वही अनफुइन नास, तुम बेहतर इंसान हो या दूसरे इंसानों को नफा पहुंचाए, हमें तो ये हदीस बाकायदा पढ़ाई गई है, समझाई गई है दावत इस्लामी के दीनी माहौल में, अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है, दीन भलाई का नाम है, ये तो मदनी चैनल पर बैठ कर भलाई कर रहे होते हैं।
अल्लाह अकबर,
तो हमें तो बाकायदा इस पर गौर करना चाहिए, और मैं तो वालिदैन से और तमाम ये टीचर से जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मौजू पर बात करें कि कैंसर और दीगर बीमारियों में इंतकाल करने वाले और दुनिया से जाने वालों में ज़्यादा फिगर उनका है जो हादसे से जा रहे हैं, एक्सीडेंट से जा रहे हैं। उस पर पूरी पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं मेडिकल के नाम पर, तो क्या ट्रैफिक के नाम पर आप मतलब कि हम ये वर्कशॉप नहीं कर सकते कि भाई इस तरह चलें, इस तरह चलें, इस तरह चलें। और वो ममालिक के जिनमें लाइसेंस लेने का कोई है ही नहीं, उसको कहते ना कि नाबीना को भी लाइसेंस मिल जाता है, उसको जाना नहीं होता कईयों को तो लाइसेंस लेने के लिए। अब बाद नाबीना वो होते हैं जो आंखों से वैसा लगता है कि नाबीना नहीं है, आंखें जैसे यूं दिखने में आंखें नॉर्मल है मगर आंखों में नूर नहीं है, आपको ऐसे भी नाबीना मिलेंगे कि उनकी आंखें इस तरह की है ही नहीं। अब वो फोटो खिंचा ले उधर बेदे हुए, तो फोटो वाले को क्या पता है नाबीना है या कौन है, क्या पता उसको भी लाइसेंस मिल जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ, चुटकुले के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो अब जहाँ ये हाल होगा तो वहाँ तो फिर ये होगा, फिर जो वैगन चलाने वाले, बसें चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले जो हैं वो, हाँ ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर प्रॉपर कानून पर अमल हो जाए, प्रॉपर कानून पर अमल हो जाए, मेरा अमीर सुन्नत की वो बात मुझे याद आ जाती है कि अगर शरीयत इजाज़त देती हो ना तो सिग्नल तोड़ने वाले को इतने घंटे के लिए गाड़ी समेत थाने में बैठा लो, आप चाय वाय भी पिलाओ भले
जी,
चाय बैठाओ, छुट्टी नहीं दे, रिश्वत भी ना ले, और फला कानून तोड़ने वाले को 2 दिन, फला कानून तोड़ने वाले को 3 दिन के लिए बिठा लें, इज्जत के साथ बिठाएं, रिश्वत ना लें, कोई मारपीट करने की जरूरत नहीं है, 3 टाइम का खाना भी खिलाएं। ये सब शरीयत के मुताबिक समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, ये कहें छोड़े नहीं, गाड़ी भी बंद, बंदा भी बंद, बैठ जाए बस नॉर्मल। और आप तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, और सुनाइए, आइंदा करेंगे? मेरे बाप की तौबा, कभी ना करो, कभी ना करो, और यहां से जाते जाते ना करो, करके तो देखिए। ये बात मैंने मतलब के पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के साथ किए हैं, कैन यू इमेजिन, जो मुझे लगता है कि ये कानून में काम कर सकते थे, मगर भाई शरीय रहनुमाई के साथ चलना चाहिए। अभी करके तो देखें, लोग ना मान जाए तो मुझे कहिएगा। ये मेरे पीरो मुर्शिद अमीर सुन्नत ने कई सालों पहले कहा था वो सब हो सकता है, रिश्वत निकल जाए, ईमानदारी आ जाए, दयानतदारी आ जाए, जिम्मेदारी निभाना आ जाए, तो ये इन चीजों को भी कंट्रोल किया जा सकता है
जी। मजीद कॉल दीजिए।
अगर हम सामने से रोड से गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अचानक आगे से कोई मोड़ से कोई शख्स बिना हारन दिए आ जाता है, उस वक्त भी हादसी का बहुत ज्यादा हादसी का मतलब वो हो जाता है
जी। हाँ, इस तरह भी होता है कि यू टर्न कैसे करना है, कितना पहले इंडिकेटर देना है, कहाँ खड़े होना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं यकीन माने पाकिस्तान के बाहर मैंने जाके देखा है लोगों को ड्राइविंग आती है फिर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, कानून पर अमल है फिर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। सोचे कि जहां पर कानून पर अमल ना हो और ड्राइविंग भी ना आती हो, देख देख के सीखकर चलाना शुरू कर दिया और बिल्कुल इलीगल जो हो रहा होगा, मुझे पता है वहां हादसे का क्या आलम होगा। तो कहाँ हारन देना है, कहाँ हारन नहीं देना, कहाँ इंडिकेटर ही टूटा हुआ है, देगा किधर से? अच्छा, इंडिकेटर लगा हो तो वो चर्सी मवाली चोरी करके ले जाते हैं, मोटरसाइकिल पे गिलास लगा हो तो वो हीरोइन चीज चोरी करके ले जाता है। मैंने तो बाकायदा तो देखा है, बाकायदा तो जो स्कूटर पर जो मिरर लगता है उसका वेल्डिंग करा के रखा है, वेल्डिंग तोड़ने में उसको क्या बोलते हैं, तोड़ा यूं करेगा वेल्डिंग तो के शीशा ले जाएगा, और चोर मार्केट के अंदर ये बिकते हैं, इसमें कोई एक आध दिन की सिगरेट आ जाती होगी। ये भी है, हर जगह ऐसा नहीं होता, यहाँ ये हो रहा होता है। अब ये एक बड़ी मुसीबत है। तो यूँ कहता ना कि वो आपने वो ट्रायलर देखा होगा जिसके 12-12 व्हील होते हैं, हर व्हील दूसरे व्हील को सपोर्ट कर रहा होता है, अगर एक व्हील कमजोर हो तो उसका लोड दूसरे व्हील पर पड़ता है। तो ये होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट कमजोर हो तो उसकी वजह से दूसरे डिपार्टमेंट को भी फर्क पड़ता है, फिर दूसरी चीजें भी आगे पीछे हो रही होती हैं। तो अल्लाह पाक दावत इस्लामी को सलामत रखे, मेरे मुबल्लिगीन को अल्लाह सलामत रखे। ये आपको लगेगा ये दावत इस्लामी का जिक्र कर रहा है, मैं बिल्कुल दावत इस्लामी का जिक्र कर रहा हूँ, मुझे जिक्र करना बनता है क्योंकि हमारे मुबल्लिगीन दुनिया भर में है और दुनिया भर के इदारों में, शोबों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशन में जाकर वह नेकी की दावत दे रहे होते हैं। हमें हर जगह जाकर अपनी नेकी की दावत देनी है, खौफ खुदा, इश्क रसूल और खूब मतलब के दीन और शरीयत पर अमल, और सोसाइटी में कितना एक अच्छे मुसलमान और इंसान की तरह रहना है। जब ये बातें समझेंगे इंशाल्लाह चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी।
अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए इन बातों पर। एक और पैकेज हुजूर यहाँ शामिल करना चाहूँगा। पाकिस्तान में हर रोज 10,000 खून की बोतलों की जरूरत पड़ती है, इस पर एक रिपोर्ट है हमारे पास, आइए सबसे पहले वो देखते हैं।
पाकिस्तान में हर रोज 10,000 खून की बोतलों की जरूरत पड़ती है। एक हालिया तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 10,000 खून की बोतलों की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान में सिर्फ 10% खून की बोतलें रजाकाराना तौर पर अतिया की जाती हैं, जबकि 90% खून के हुसूल के लिए लोग रिश्तेदारों और दीगर दोस्त अहबाब से राब्ता करते हैं या फिर पेशावर खून अतिया करने वाले लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। तिबी माहरीन के मुताबिक पाकिस्तान में रजाकाराना तौर पर खून अतिया करने वालों की तादाद बहुत कम है। 10,000 खून की बोतलों को रोज जमा करने के लिए रजाकाराना अतिया करने वालों की तादाद बढ़ाने की जरूरत है।
अल्लाहु अकबर। हुजूर, ये रिपोर्ट आपने मुलाहजा फरमाई, क्या इरशाद फरमाएंगे?
फिर ये तो क्राइसिस उस वक्त बहुत ज्यादा थे जब कोविड का सिलसिला शुरू हुआ था, और अभी ये रिपोर्ट देखकर पता चला कि अभी और मतलब के ऐसे खून के ऐसे मरीज हैं दुनिया भर में, मुल्क में, कि जहां पर मतलब के इतनी सारी बोतलें ब्लड की चाहिए होती हैं।
बिल्कुल ऐसा है।
तो मेरे लिए ये थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी।
अल्लाह,
अब इसमें ये कि हो सकता है कि इसमें कहीं खुदा ना खासा कोई गलत फहमी ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि हमने जब ब्लड दिए हैं और अभी तक हमारा ब्लड देने का सिलसिला जारी है FGRF के तहत, और ब्लड दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद 60, 65 या 70 हज़ार के आसपास ब्लड के बैग्स दिए जा चुके होंगे दाऊद इस्लामी के तहत, और ये कहीं ना कहीं कम ज़्यादा तौर पर रेगुलर चल रहा होता है।
सही।
और हमारा यही है कि जब तक खून है तो खून देते रहेंगे।
अल्लाह
माशाल्लाह, नौजवानों की दावत इस्लामी में खून देने वालों की कमी नहीं है, और ये बहुत बड़ा एक है। तो जिन इदारों को ब्लड दिए जा रहे होते थे तो उन्होंने खुद भी हमको कहा है किसी मौके पर कि अभी थोड़ा ब्रेक लगाएं, वरना क्योंकि ब्लड की एक एक्सपायरी डेट होती है।
सही।
ना फिर ऐसा ना हो कि किसी के काम ना आए। अच्छा ये बताओ, तो दावत इस्लामी का अपना कोई ब्लड बैंक नहीं है? यानी हम ब्लड सप्लाई, ब्लड देते नहीं है किसी को। जैसे कोई कहेगा यार दावत इस्लाम वालों को फोन करो ब्लड की जरूरत है, तो हम ये नहीं कर सकेंगे।
सही।
जो ब्लड सप्लाई करने वाले, ब्लड देने वाले जो इदारे हैं, हमारी उन इदारों के साथ MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं, उनके साथ हमारी मतलब की कोऑर्डिनेशन है। हम उन्हें अब ब्लड की बोतलें हम उन्हें दे देते हैं,
ठीक है,
क्योंकि पेशेंट उनके पास है और वो अपने पेशेंट को ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं। तो दावत इस्लामी से अगर आप रब्ता करेंगे, ऐसा माजी में ऐसा हुआ है कि हमें हमने ब्लड दिया तो हमें ब्लड दिया जाए, तो आपने जो ब्लड दिया वो ब्लड तो हम उनको दे चुके जो ब्लड देने वाले
सही
इदारे हैं। तो डायरेक्टली दावत इस्लामी ब्लड देती नहीं, हमारे पास कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसी हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है जहाँ इसको हम ब्लड हम सेव करते हैं। हम ब्लड हमारे इस्लाम में दे रहे होते हैं और हम वो ब्लड इदारों को जिनसे हमारी बातचीत हुई उनको दे देते हैं। तो बीमारी है थैलीसीमिया।
हाँ जी।
अब थैलीसीमिया के ताल्लुक से मैं तो जो मेडिकल से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उनसे दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर काम किया, मेरी विफाकी गवर्नमेंट के साथ भी इस मौजू पर बात हुई है थैलीसीमिया के टॉपिक पर।
सही।
इस्लामाबाद जब मैं गया था तो हमने हमारी कुछ वर्किंग बताई थी, कुछ गवर्नमेंट कर रही थी, अगर गवर्नमेंट इस वर्किंग को मजीद इन्हेंस करे और आम पब्लिक तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाए। बस इदारे हॉस्पिटल मेडिकल के जो इस पर काम कर रहे हैं, इन्होंने ब्रोशर भी निकाले हैं, पंफलेट भी निकाले हैं।
सही।
लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर भी प्रॉपर काम करने की जरूरत है।
सही।
थैलीसीमिया मेजर हो या माइनर हो, ये ऐसा नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता। अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को इससे बचाया जा सकता है, कवर किया जा सकता है, और कुछ कम्युनिटीज ने अपनी पूरी कम्युनिटी को थैलीसीमिया फ्री किया हुआ है। जी, पूरी पूरी कम्युनिटी थैलीसीमिया फ्री हो गई है। तो ऐसा भी नहीं कि पूरे पाकिस्तान में या दुनिया के मतलब हम हमें से कई लोग थैलीसीमिया के, ऐसा नहीं है। इसके कुछ टेस्ट हैं जो मैं अभी यहाँ पर विदाउट प्रिपरेशन डिस्कशन नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें भी कुछ मेडिकली तौर पर इख्तलाफ राय पाया जाता है कि ये है और ये नहीं है, ऐसा है और ऐसा नहीं है। तो जो मतलब कि इस तरह के जो सोशल जो सोसाइटी के जो इदारे हैं वो और दीगर लोग मिलकर, गवर्नमेंट और जो सेमी गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब मिलकर, हमने भी मदनी चैनल पर इसकी थैलीसीमिया के ताल्लुक से ठीक ठाक कंपेनिंग की है, अवेयरनेस दी है। अमीर अल सुन्नत ने मदनी मुजाकरों में थैलीसीमिया के ताल्लुक से कहा है, हॉस्पिटल से हमारे रबते रहे हैं। तो अगर ये कहें तो अल्लाह पाक ने चाह तो हम आने वाली नस्लों को थैलीसीमिया जैसी बीमारी से बचा सकते हैं, ये बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, कुछ एहतियातें करनी पड़ेंगी। تو اللہ پاک خیر فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں بھی ان دکھیارے پیارے آقا کی امتیوں کی خدمت کرنے اور مدد کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین. اللہ پاک اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. ایک پیکیج بھی ہمارے پاس موجود ہے. جب یہ کووڈ کا یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت کا ایک ہسٹوریکل کہیے ایک پیکیج ہے. اس وقت امیر علیہ سنت کے کچھ مبارک کلمات بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہیں. کیا تھے وہ کلمات؟ جی سنائیے.
قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو درد امت رکھنے والی شخصیت ہیں، اور انہوں نے اسکرین پر آ کر چینل پر آ کر اعلان کیا. کیا امیزنگ اعلان کیا، آئیے دیکھتے ہیں.
اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں، میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بےچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں، آقا کی دکھیاری امت کی امداد کریں.
اور اس اعلان کے بعد تو ناظرین کمال ہو گیا. ہسپتالوں میں لائن لگ گئی اور عاشقان رسول اپنا خون دینے کے لیے پہنچ گئے، خون کا عطیہ دیا. اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت تک 55,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دعوت اسلامی کی طرف سے دی جا چکی ہیں. اور یہ کسی بھی این جی او کا ایسا کارنامہ ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور ہم نے یہ کام ابھی ختم نہیں کیا. ہمارا یہ اعلان جاری ہے کہ وہ تمام ادارے جو تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون دیتے ہیں، آپ کو جب بھی خون کی قلت ہو آپ ہم سے رابطہ کریں. آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف آپ کے ساتھ حاضر ہے.
اللہ اکبر. اللہ پاک خیر فرمائے. حضور میرے پاس کچھ خبریں ہیں جو میں آپ سے مزید شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. سوشل میڈیا پر شہریوں سے انعامات کا لالچ دے کر فراڈ کے واقعات. یہ ایک خبر ہے کہ سوشل میڈیا پر فراڈ اور جعلی کمپنیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو لوگوں کو انعامات کا لالچ دے کر مختلف اسکیمز میں رقم لگانے یا ڈیٹا شیئرنگ کرنے کا جھانسہ دے کر اچھی خاصی رقم لوٹ کر غائب ہو جاتے ہیں. اور عوام کو لوٹنے کے لیے موبائل فون پر ایس ایم ایس، واٹس ایپ گروپس یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے پھنسایا جا رہا ہے. یہ ایک خبر ہے حضور. اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیکل میں ایڈمیشن کے نام پر فراڈ کرنے والا گروہ جو ہے گرفتار ہو گیا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟
میں اس پر یہی عرض کروں گا، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اچھا اب یہ کہ بعض کمپنیاں وہ ہیں جو باقاعدہ ہمیں معلومات فراہم کرتی ہیں کہ ہم آپ سے اس چیز کی کبھی ڈیٹیل نہیں لیں گے. آپ کے جس جہاں آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے نا، جنرلی تو بینک کی طرف سے آپ کو یہ نوٹیفیکیشن آتا ہوگا کہ ہماری بینک، ہمارا ادارہ آپ سے کبھی بھی یہ انفارمیشن فون کے ذریعے نہیں مانگے گا. اب میں آپ کو اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں، پریکٹیکل اپنا واقعہ. دوپہر کا وقت تھا، مجھے کال آئی، میں نے کال اٹینڈ کی. کال بھی باقاعدہ اسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے، میں وہ مطلب اس کا نام لکھا تھا ڈپارٹمنٹ کا. میں نے کال اٹینڈ کی اور مجھے کہا کہ آپ کا یہ یو ہے اور آپ اپنا جو یہ پین ہے، آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ آپ چینج کریں، یہ مطلب کہ اس کے احتیاطی طور پر ہم یہ مہم چلا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا میں نے ٹھیک لائن کاٹ دی. دو منٹ کے بعد پھر کال آئی، دو یا تین منٹ کے بعد، آپ نے چینج کر لیا. مجھے اسٹرائک ہوا، میں نے کہا کبھی یہ ہوتا نہیں ہے ایسا. اگر کسی نے انفارمیشن دی بھی تھی تو دے دیتے تو ختم ہو گئے بات، پیچھے تو کوئی بھی نہیں پڑتا آپ کے. میں نے اب اس نمبر کے ذریعے باقاعدہ اس پر انکوائری کروائی اور پتہ چلا یہ فیک نمبر ہے، غلط نمبر ہے. اگر آپ نے اس کے کہنے پر، اس کال کے بعد اگر آپ نے کہ پین یا پاسورڈ یا جو بھی چیز تھی اگر آپ نے چینج کیا ہوتا تو فوراً آپ کا چینجز نمبر تھا اس کے پاس جاتا اور وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا تھا. یہ میرے ساتھ پریکٹیکلی جو واقعہ ہوا میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بچانے والی اللہ کی ذات ہے، تو اب آپ کے ساتھ بھی کوئی اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو جائے کہ آپ اس پر ہیں، ذرا موبائل پر ہی آپ کے جو پاسورڈ ہوتا ہے، پن نمبر ہوتا ہے، آپ کے بینک کا پن، آپ کا اکاؤنٹ کا پن نمبر ہوتا ہے، پاسورڈ ہوتا ہے، ای میل کا پاسورڈ ہوتا ہے، بہت سارے پاسورڈ ہوتے ہیں جو آپ رکھتے ہیں، آپ کو کال آ جاتی ہے یا آپ کو ایسا چیز آ جاتی ہے. کیونکہ ادارے اور پروفیشنل ادارے، جب بینکنگ ہو یا اس طرح کے جو ریکگنائزڈ ادارے جن سے آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ یوں مطلب کہ ایک چیپ انداز میں ہو کہ نارمل انداز میں آپ سے رابطہ نہیں کرتے. ان کا باقاعدہ ایک رابطے کا پروٹوکول ہے، وہ اس پروٹوکول کو باقاعدہ آپ کو سمجھا چکے ہیں، ہم اس پروٹوکول کے ذریعے آپ کے پاس آئیں گے، اس پروسیجر کے ذریعے آپ کے پاس آئیں گے. اب ہم ایبسنٹ مائنڈ ہوں اور ہم اس پروسیجر کو فالو نہ کریں تو پھر یہ ہماری مسٹیک ہے. اب سائبر کرائم یہ باقاعدہ ایک دنیا میں، جیسے کہ तिजोरी तोड़ कर पैसे निकाल लेना, गाड़ी तोड़ कर पैसे निकाल लेना, या कोई और चीज़ चोरी कर लेना, डकैती कर लेना, इस तरह की जो चीज़ें थी। अब ये चीज़ें तो चली रही थी और चल भी रही हैं, लेकिन लोगों ने अपनी चीज़ों को बाकायदा अपने पासवर्ड अपने डिजिटली तौर पर भी सेफ एंड सिक्योर किया हुआ है, और अपने चीज़ों को उन्होंने अपने लैपटॉप पर, अपने ईमेल पर और अपने यूँ समझे इंटरनेट के ज़रिए कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर सेफ किया हुआ है। और वहाँ पर घुसकर, जिसमें उमूमन तौर पर आप इसको हैकर कहते हैं, जो कंप्यूटर हैकर होते हैं, ये जाते हैं बाकायदा आपकी पूरी साइट को, आपके पूरी चीज़ को हैक कर लेते हैं, और वो आपसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब देखें, हम भी तो कोई एप्लीकेशन इधर डाउनलोड कर रहे थे, एग्री 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 एग्री, अब पढ़ा ही नहीं किस चीज़ को अपने एग्री कर रहे हैं,
ऐसे
जा रहे हैं। अब हमने उनको क्या क्या इजाज़त दे दी, अब भी नहीं जानते,
ऐसे ही।
फिर हम बोलते अब यार ये क्या हो गया, ये क्या नहीं हो गया, एग्री आपने खुद एग्री किया, ठीक है मैं तैयार हूँ, आई एम ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हम अपनी एप्लीकेशनों में कर रहे होते हैं, या जल्दी से डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, बाकी हम अपना काम करें। इंस्टॉलेशन के अंदर हमने क्या क्या अथॉरिटी दे दी उसको, कहाँ कहाँ इसको झांकने ताकने की इजाज़त दे दी है, ये तो शायद हमने भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये हमारा जो प्रैक्टिस है ये है। अब साइबर क्राइम यूँ आ जाता है बाज़ औक़ात, अगर ये प्रॉपरली इदारे से आ रहा तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक आया ही फेक अंदाज से है, गलत अंदाज से है, तो डेफिनेटली फिर आपकी इन्फॉर्मेशन ले जाएगा, आपको तरह तरह के मैसेज आएंगे, आपको तरह तरह की कॉलें आएंगी, आपको तरह तरह के लालच दिए जाएंगे कि मुबारक हो, सक्सेस आपका, ये निकल गया, वो निकल गया, और आप अभी मतलब कि इस नंबर पर कॉल करें, जैसे कॉल करेंगे तो जनाब आपको हम वो बता देंगे, बस आपकी कॉल करने की देर है,
सही।
फिर वो जो घर बचा कुछ आता है शायद वो भी चला जाए, तो कोई पता नहीं है।
अल्लाह हू अकबर।
अगर अच्छा, ये इसके सबके पीछे थीम क्या है, ये कैसे कर लेते हैं आपके साथ, हम सबके साथ, लालच, कोई और तरीका नहीं है, ये डरा कर नहीं करते, डरा कर कौन देगा,
बिल्कुल ऐसा है।
ये लालच देते हैं, हम हमारे सामने हमारे मतलब के दिखावे, ऐसा लगता है कि पैसा आने वाला है, बस गाड़ी आने वाली है, मोबाइल आने वाला है, बोन बोन बताइए हमको, कुछ दो चार डॉलर हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, ये ये इससे लालच की वजह से है, और लालच में हमने नुकसान उठाया है। ये अजीब व गरीब हीर से हमें कि हम अपने हाथों ही अपनी चीज़ें उठाकर दे देते हैं, तो ये घर की औरतों को भी इसमें एजुकेट करें, क्योंकि अब तो इंटरनेट और मोबाइल अब बच्चों बच्चों के हाथों में है, और सबके बाद अब कहाँ किसके जरिए क्या हो जाए, अब तो मतलब कि मैं तो दिमाग मेरा काम नहीं करता, मैं आपको क्या अर्ज करूँ, ये मोबाइल है
जी,
मोबाइल मेरा बंद है, ठीक है
ठीक है,
मगर यूँ मोबाइल मेरा ऑन है, ठीक है, लेकिन मोबाइल मेरा मैं यूज़ में नहीं, ये बंद पड़ा हुआ है,
ठीक है,
ये मेरा प्रैक्टिकल वाकया, देखने सुनने वाले समझे आप,
सही,
मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
ओके,
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात मैं पहुंचा रहा हूँ मदनी चैनल के नाजरीन को, फिर ये बात मैंने चूंकि कहीं और की है और मुझे इसकी वेरिफिकेशन मिली है, इसलिए मैं इसको इतने इंटरनेशनल मीडिया पर कर रहा हूँ,
सही
जी, क्योंकि अब ए आई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का,
बिल्कुल ऐसा है।
अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ बात कह रहे हैं,
ठीक है,
किसी कंपनी का नाम ले रहे हैं, इस कंपनी के बारे में बता रहे हैं, मैं उस कंपनी के तालुक से डिस्कस कर, मोबाइल को मैंने नहीं छेड़ा,
ठीक है,
मैं नेक्स्ट डे उसी कंपनी की ईमेल मेरे मोबाइल पर पा रहा
हूँ,
अब कोई भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है कि मोबाइल हमारे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारे किसी न किसी, आई डोंट नो, मे बी कि ये गलत हो
जी,
मे बी ये गलत हो, ये थ्योरी गलत हो, ये चीज गलत हो, ये इंफॉर्मेशन गलत हो, मगर ये हुआ कैसे। अच्छा, ये चीज जो मैंने खुद देखी, ये मुझे पहले से पता थी कि ऐसा भी हो जाता है, लिहाजा आप देखिए जो सेंसिटिव जगहें होती हैं
जी,
जहाँ सेंसिटिव डिस्कशन होती हैं, और नॉर्मल इस तरह के जो मोबाइल होते हैं स्पेशली स्मार्टफोन, ये बाहर रखे जाते हैं, अंदर लाने की इजाज़त नहीं होती, बहुत सारी वजूहत हो सकती है, क्या हो क्या ना हो, मैं ये दोबारा कह देता हूँ कि हो सकता है कि मेरी ये जो डिस्कशन है, अगर हो सकता है कोई ऐसा मतलब कि माहिर बैठ कर सुन रहा हो और वो मुझे कॉल करके बता दे कि नहीं आप जो कह रहे हैं ऐसा भी है, मगर इतना तो जरूर है कि अगर आप किसी चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं
जी
और किसी सर्च इंजन पे जाकर कुछ लिख रहे हैं, तो उसके ताल्लुक से तो फिर आपके साथ लाइन लग जाती है,
बिल्कुल ऐसा,
बिल्कुल लाइन लग जाती है,
एक के बाद दूसरी आती,
एक के बाद दूसरी लाइन लग जाती है, मतलब मैं मतलब ये सिर्फ आप कंप्यूटर पर किसी से बातचीत नहीं की है, मगर पूरा अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के AI का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे रहा होता है, और आप सोचते रह जाएं कि मैंने किसी से शेयर नहीं किया, मैंने किसी से बात तक नहीं की है, बस अभी तो उठा हुआ, मैं चलो मोबाइल में चेक कर लेता हूँ शायद कुछ मिल जाए
जी।
और मोबाइल को दिया आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा लगता है कि यही एक किसी से बात की जरूरत नहीं, इसी से बात करना काफी था।
ऐसा ही हुजूर, और बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं कि जब हम कुछ सर्च करते हैं ना बाजूकात, तो चीजें सर्च कर करके वो हमारी जो एक्टिविटी लॉग होता है वो जमा होता रहता है। अच्छा, वो बाजूकात हम अभी की बात नहीं कर रहे, हमने कोई 2 साल पहले 3 साल पहले कुछ इस तरह की सर्चिंग की होती है, तो वो डेटा हमारा वो भी जो है वो स्टोर हुआ होता है। और अगर ये इस तरह की चीजें हमारी जो सर्चिंग के सेंस में होती है फिर वही रिकॉल होती है, तो ये उसी का ही एक एल्गोरिथम जो है वो इसको मैनेज कर रहा होता है। और जो आपने हुजूर एक बात फरमाई के फ्रॉड धोखाधही, इसमें एक बिल्कुल हालिया एक शख्स की एक खबर है, और बिल्कुल यानी उसकी अपनी आप बीती है, 60,000 रुपये देकर एप्लीकेशन से, और आप जो है वो उसके बदले में इसका डबल ट्रिपल जो है वो उठा सकते हैं। तो 60,000 भी नहीं मिला, और उस बंदे को जो डबल ट्रिपल था वो भी नहीं मिला।
तो कहाँ से मिलना था? अरे नहीं मिला ना, इसका तो लॉस हुआ। मिलता तो क्या लॉस, नुकसान होता, ये मैं आपको बता दूं
क्या होता था।
ये क्या करते हैं कि जैसे कि आप को इन्होंने कहा 60,000 दें, तो हम आपको फोर डबल 1,20,000 दे देंगे,
ठीक,
किसी भी तरीके से आपको 2-3 महीने तक 1,20,000 देंगे। आपने 1,20,000 लेकर 50 लोगों को तैयार कर लिया 60,000 देने पर, ये 1 महीने तक उनको भी 1,20,000 देंगे,
सही,
उन्होंने 50 को तैयार कर दिया 60,000 देने पर,
सही,
ये उनको भी 1 महीने तक 1,20,000 देंगे,
ठीक है,
इनका मतलब अमाउंट इनके पास आ गया। तो इन्होंने गोया कि यूं समझे कि 1 करोड़ रुपए आपसे ले लिया 60,000 करके,
सही है,
और टोटल जो इन्होंने 1-1, 20-1, 20-1 करके जो रिटर्न किया ना, ये मतलब कि ये 10-15-20 लाख से ऊपर का अमाउंट नहीं है, 70-80 लाख रुपए एक तरफ की है, और आप आपको ये मिल जाए तो बताइएगा मुझे। ये बाकायदा हो रहा है,
ऐसा ही है बिल्कुल,
इन्वेस्टर भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी हो रहा है, यानी फिजिकली भी हो रहा है, डिजिटली भी हो रहा है। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा करे, भाई ये क्यों दे रहा है मेरे को इतना,
बिल्कुल ऐसा,
क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, तो लालच में आकर हमने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। वो है ना कि वो हदीस पाक में है ना कि दो हरीस कभी शेयर नहीं होते, एक माल का हरीस एक इल्म का हरीस। तो इस तरह की चीजें वाकई तो हमें बताई गई है, हलाकत में डालने वाली चीजें ये
जी,
माल और दुनिया की मोहब्बत।
अब हुजूर करना क्या है इनका, ये फ्रॉड तो जिसके साथ हुआ हो गया, जिसको कॉल आई उस
उससे क्या क्या कर रहे हैं अब, अच्छा क्या कर रहे हैं, तो अब हम कर क्या रहे हैं,
गालियां बदुआएं
नहीं, हम
ऐसी जो चीजें करते हैं,
हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चीजें नहीं है, किसी माहिर से पूछ लेंगे, पूछते भाई ये आया क्या करना चाहिए,
सही,
इमीडिएट आपको कॉल अटेंड करते तो कुछ नहीं हो जाता,
ठीक है,
तो किसी माहिर से पूछ लें, किसी तजर्बेकार से बात कर लें, या हमारे ये प्रोग्राम जो हो रहे हैं इस प्रोग्राम को समझ लें। इसमें मतलब कि पूरे फैमिली को हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके हाथों में ऑलमोस्ट स्मार्टफोन है, अरबों की तादाद में दुनिया में लोग इंटरनेट यूजर हैं, और सोशल प्लेटफॉर्म यूजर अरबों की तादाद में, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये 2-4-10 हज़ार से रिलेटेड नहीं है, ये अरबों लोगों से रिलेटेड है,
सही,
और बाकायदा इसके ऊपर भी पूरी की पूरी वीडियोस बनी हुई होंगी जो बचाने संभालने की कोशिश की जाए।
बिल्कुल ऐसा है,
हमें भी कोई समझाता था बताता था इंडिविजुअल, या बैठकर हमें कुछ मीटिंग्स में बातें हुई हैं जिसका निचोड़ हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें कुछ प्रैक्टिकल हुआ है।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए और देखने की दावत आम करते रहिए, नमाजों की पाबंदी खुद भी करते रहिए और दूसरों को पढ़ने की दावत भी देते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम।
हैबरत जहां में निगाहें उठा तो यूं गफलत में जीवन अपना।